शांति शांति शांति. वी आर डिस्कसिंग दीज 8 मंत्रस. दैट्स व्हाट आई साइटेड द फर्स्ट एंड द लास्ट वन जस्ट नाउ. एंड वी डू दैट एवरी मॉर्निंग व्हेन वी एट द स्टार्ट ऑफ आवर हवन. This has been compiled by our rishis with a great thought, and we must benefit from that. The title is Ishwar Stuti Prarthana Upasana. Stuti is yani gurgaan karna. Gurgaan aap tabhi kar sakte hain jab aapko uske gun malum hai. So that is why knowledge is there. You have to know it. फिर प्रार्थना में यू सीक सपोर्ट. केवल प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता. प्रार्थना में हम उनकी सहायता मांगते हैं आफ्टर पुटिंग इन आवर फुल एफर्ट. तो दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्शन. तो स्तुति का संबंध है ज्ञान से, नॉलेज से. प्रार्थना का संबंध है कर्म से, एक्शन से. तीसरा है उपासना. उपासना तो उपासना ही है. उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना भी बड़ा कठिन है. कुछ लोग बोलते हैं कम्युनियन विद गॉड, लेकिन उसका अपना अर्थ है. मैं उपासना से ही काम चलाऊंगा. और हमारे ये शब्द सब ऐसे हैं, इन शब्दों में ही अर्थ मिला हुआ है, निहित है. तो उपासना में क्या हुआ, उप और आसन. आसन माने आसन पर बैठ जाना. उप यानी समीप में, के पास बैठना. तो यहां अनुवृत्ति है, कॉमन शब्द है ईश्वर. तो ईश्वर के बारे में जानना, उस दिशा में कुछ काम करना और फिर उसके समीप बैठना, उपासना. ये इन 8 मंत्रों का आशय है. और मेरी बहुत इच्छा है, क्योंकि ये मंत्र हम रोज यहां बोलते हैं, पीछे हमारे बच्चे भी बोलते हैं संस्कृति स्कूल में. इन मंत्रों के अर्थों को आप यहाँ जब आचार्य श्री नंदा जी हवन कराते हैं तो बड़ी लय में उनका हिंदी पद्यानुवाद भी गाते हैं. आप सब ये सब जानते हैं. ये शब्द के अर्थ पर है, शब्द के लेवल पर है. थोड़ा आप अर्थ भी जानते हैं. मैं चाहता हूं आप इन मंत्रों के भाव की गहराई में चले जाएं, और फिर बाद में उससे आप यू एसिमुलेट इट इन योर लाइफ. तो उपासना पर मैं बहुत जोर दे रहा हूं. तो मैं 8 मंत्रों का अर्थ आपको समझा भी रहा हूं. वो आपको बहुत सी किताबों में भी मिलेगा. हाँ, मेरी शैली थोड़ी अलग है. मैं कुछ अलग ढंग से बोल सकता हूं, लेकिन आप शब्दों में ही रह जाएंगे तो जो मैं चाहता हूं वो नहीं होगा. तो मेरा अंतिम प्रयास यह है कि आप ईश्वर उपासना को अपने दैनिक जीवन में अपनाएं. तो इस ढंग से अब आज भी जैसे मेरे बोलने के बाद यहां संजय सूद जी आएंगे आपसे मेडिटेशन लीडिंग टुवर्ड्स ईश्वर उपासना. तो ज्ञान और कर्म ऐसा है परमात्मा ने, आज वो मंत्र भी एक आने वाला है, यह आत्मदा बलदा. तो हमारे आत्मा को बल देता है. तो कैसे, हमें भेजने के पहले इस संसार में मेरा जो छोटा सा एक कण से भी छोटा आत्म तत्व है, He is enveloping it with mind and then with body. So, बिना body और mind के हम knowledge action नहीं कर सकते हैं. So, we acquire knowledge, जैसे अभी आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं. तो ये मेरा function अभी outgoing है. This is action. आपका function है, you are trying to gather the, acquire the knowledge which is incoming function. So, incoming is knowledge and outgoing is action. Both require the instruments of body and mind. बिना body और mind के ये नहीं हो सकते. तो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उपासना एक विचित्र चीज है, जहां body and mind are hindrance. अब परमात्मा ईश्वर की उपासना करनी है तो body और mind से disconnect होना होगा, तभी आप उसके पास जा सकते हैं. बाकी चीजों के साथ, बाकी ज्ञान और कर्म की जो गतिविधियां हैं, उसमें यू आन टू बी कनेक्टेड टू योर बॉडी एंड माइंड. लेकिन जब आपका मन कहे कि अब ईश्वर उपासना करनी है, तो फर्स्ट चैलेंज इज टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम बॉडी एंड माइंड. डिस्कनेक्शन फ्रॉम बॉडी और माइंड ऐसे ही नहीं होगा, उसके पहले यू हैव टू बिल्ड योर माइंड एंड बॉडी ऑल्सो टू अ थॉरली इनएक्टिव स्टेट. जैसे आप यहां आए हैं, आप घर से कार के में बैठे हो, चल के कार को ड्राइव करके यहां तक आए. कार आपका एक साधन था, जैसे बॉडी एंड माइंड आर आवर इंस्ट्रूमेंट्स. आप अंत में जब यहां आपने कार रोक दी, देन यू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द कार, नहीं तो आप सत्संग हॉल में नहीं आ पाते. लेकिन आप कार से उतरने के पहले आपने एक काम किया, कार को यथास्थान रोका, पार्किंग स्पॉट पर उसको अच्छी तरह से रोक दिया. When your car became inactive, then only you disengaged from the car. Is it not? So, जब भी आप किसी instrument से काम, अभी मैं ये laptop लेकर बैठा हूं, laptop से जब मुझे disconnect करना होगा तो मैं इसको अच्छी तरह से shut down करूंगा, फिर मैं इसको थैले में डाल दूंगा, फिर मैं किसी और दूसरे काम में लगूंगा. तो जिस चीज में आप engaged हैं उसके लिए एक instrument है, और जब आप उसकी activity, अपनी activity बदलना चाहते हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट को यथावत रख देना पड़ता, उससे डिस्कनेक्ट होना पड़ता. जैसे आप कार से डिस्कनेक्ट हुए फिर आप सत्संग हॉल में आए, तो वैसे ही ध्यान रखना है. ईश्वर उपासना के लिए द नेसेसरी कंडीशन इज टू ब्रिंग योर माइंड टू अ टोटली इनएक्टिव स्टेट. ये होता है मेडिटेशन. इसको सांख्य में क्या कहा, ध्यानम निर्विषयम मनः. मन में जब कोई विषय नहीं है तब आप ध्यान में है. हिंदुस्तानियों को ध्यान समझाने में मेरा दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि ध्यान में वो यही समझते हैं, ध्यान देना ध्यान देना. मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, या ध्यान से पढ़ो कंसंट्रेशन. पर ये ध्यान अलग है, टेक्निकल टर्म है. इसको अटेंशन नहीं बोलते, इसको कंसंट्रेशन नहीं बोलते, इसको क्या इंग्लिश में बोलते हैं, मेडिटेशन. ये अजीब सा ध्यान है जिसमें किसी चीज पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है ना, इसको हम मेडिटेशन बोलते हैं. और फिर जब आपका माइंड टोटली इनएक्टिव हो गया, अब आप उससे डिस्कनेक्ट हुए और फिर परमात्मा के पास चले गए, तो वो कहलाएगी ईश्वर उपासना. तो मेडिटेशन इज अ नेसेसरी कंडीशन बट नॉट सफिशियंट कंडीशन. उसके बाद एक स्टेप में आपको परमात्मा की गोद में जाना है, उससे थोड़ा लगाव होना चाहिए उसके गुणों का. तो ये आठ मंत्रों में वो मोटिवेशन है कि हम उसकी उपासना में रुचि लें. आप ये मंत्र को बोलते जाए आपकी उपासना नहीं होगी, बल्कि उपासना के गहरे क्षण में तो ये मंत्र भी आपको भूलने पड़ेंगे, है ना. हम गायत्री मंत्र का उपयोग करते हैं. अभी संजय जी गायत्री मंत्र के माध्यम से आपसे उपासना करवाएंगे. तो जैसे मैंने कहा, आप घर से कार में चल के आए, कार इज लाइक योर माइंड, एक इंस्ट्रूमेंट है. अब आप समझिए उसी एनालॉजी में, जिस रास्ते से जो जीपीएस आपको रास्ता दिखा रहा था, दैट रास्ता इज योर गायत्री मंत्र. गायत्री मंत्र एक पथ है, उस पथ पर आपकी कार चल रही है, उस गायत्री मंत्र के अर्थ के भाव पर आपका मन चल रहा है. लेकिन जब आप उपासना में जाएंगे तो पथ भी छूट जाएगा, कार भी रुक जाएगी, कार से भी आप डिस्कनेक्ट होंगे. तो ये भी तीन स्टेप कहलाएंगे, कई स्टेप हमें समझाएंगे, पर अंत में आपको ध्यान रखना है कि गायत्री मंत्र भी एक इंस्ट्रूमेंट, एक साधन है. अंत में उसकी उपासना में कुछ भी नहीं रहना, क्योंकि आपने कुछ सोचना शुरू कर दिया, अच्छे अच्छे मंत्रों पर विचार शुरू कर दिया, ईश्वर के बारे में ही अच्छी बातें सोचने लगे, तो यानी योर माइंड इज इन एक्टिव, माइंड इज नॉट इन एक्टिव, है ना. तो ईश्वर उपासना बहुत आसान भी है, वो भी आज मैं बताऊंगा कैसे आसान है, और बहुत कठिन भी है. तो ये चीज ऐसी है कि अभ्यास से सबकी हो जाती है. तो इसको हम आज ऐसे मैं बताना चाह रहा था कि ज्ञान कर्म और उपासना, इसके हमारे पास दो साधन है, बॉडी और माइंड, जिसमें पांच ज्ञानेन्द्रिय हैं, पांच कर्मेन्द्रिय हैं. ज्ञान और कर्म का सिलसिला 24 घंटे चलता रहता है, वो हमारा भी चलता है और पशु पक्षी का भी चलता है. हम कोई महान नहीं है, बल्कि उनकी आंखें हमसे अच्छी देख लेती हैं, उनके क्रियाकलाप. बहुत से पशु ऐसे हैं जन्म लेते ही पानी में तैरने लगते हैं, हमारे लिए बड़ा मुश्किल है ये सब. और बहुत से पशु हमसे बहुत तेज गति से दौड़ते हैं. पशु पक्षी हमसे बहुत आगे हैं कई चीजों में, लेकिन हम उनसे आगे हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस थर्ड डायमेंशन इन आवर लाइफ, नेमली उपासना। यदि आप उपासना नहीं कह रहे, मैं आपको किसी को बुरा भला नहीं कह रहा, यदि आप उपासना नहीं कहें तो आपका जीवन पशुपत है, क्योंकि परमात्मा ने ऐसा ही बनाया है कि केवल मनुष्य ही उपासना कर सकता है, पशु पक्षी उपासना नहीं कर सकते। और यदि आपने ये नहीं किया तो by choice you are leading a life almost like an animal's life। So, बुरा ना माने, मैं आपको एक फिलोसफी की बात समझा रहा हूं, ये इतनी आवश्यक है इसलिए हम आपको सब चीज लेकर और प्रैक्टिस करा के भी सिखा रहे हैं। तो देखिए, पिछली बार तो पहले जो एक सेशन था, मेरे पास 5 सेशन थे, आज मेरा तीसरा ये सत्य है। पहले सेशन में तो मैं ईश्वर को ही देखकर मैं घबरा जाता हूं, मुझे बहुत डर लगता है। आज समाज में जो लोग आते हैं, मैं चाहता हूं ईश्वर को देख के वो ये ना समझें कि वी आर फॉलोइंग ए फेथ बेस्ड रिलीजन, क्योंकि जहां ईश्वर का नाम आ गया, मंदिर मस्जिद चर्च वाले ने अपनी बड़ी बड़ी दुकान सजा के रखी हुई है। आय समाज वो चीज नहीं है ना? तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की पहले देने कि आज के मानव समाज साइंस और रिलीजन में बटा हुआ है, और रिलीजन के बारे में जितना कम बोले अच्छा है। रोज अखबार में, टीवी में जो समाचार आते हैं, सारे रिलीजन वालों के झगड़े हैं, कहीं कुछ हुआ और प्यारा क्या है, दो रिलीजन वाले आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, उनमें सुख शांति है ही नहीं। ऐसे में हम साइंस वालों को देखते हैं, साइंस वाले बहुत अच्छे समझदार लोग हैं, लेकिन वो भी बेचारे एक जगह अटक गए हैं आजकल। वो है मुख्य दो बिंदु हैं, एक तो हमारी चेतन सत्ता क्या है, व्हाट इज आवर कॉन्शियसनेस। ये अचानक एक जीता जागता आदमी एक क्षण में जब डेड बॉडी बन जाता है, तो ये इतना बड़ा ट्रांजिशन कैसे आया, एंड व्हाई इज दिस सो मच इरिवर्सिबल। कोई और चीज है, जैसे कार का उदाहरण दिया, लैपटॉप है, इफ दे गेट आउट ऑफ ऑर्डर वी कैन चेंज सर्टेन कंपोनेंट्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द वर्किंग कंडीशन। पर ये मृत्यु बड़ी अजीब सी चीज है, जब एक अच्छा चलता फिरता इंसान या पशु पक्षी अचानक कुछ उसको हुआ एंड देन ही इज डेड, एंड नो मैटर वॉट यू डू, एनी बडी डज एनी थिंग, यू कैन नॉट ब्रिंग इट अलाइव। तो ये जो कॉन्शियसनेस है, ये सबका किसी का पीछा छोड़ नहीं है, साइंटिस्ट भी बेचारे बहुत परेशान है। दूसरा एक प्रश्न उनके दिमाग में है कि हम सब अच्छा जीवन जी रहे हैं, वी आर मॉरली साउंड, एवरीथिंग इज गुड, सोसाइटी इज गुड, लेकिन इतना कुछ खून खराबा, इतना कुछ क्यों हो जाता है? आखिर वॉट आर वी सपोज टू डू इन दिस वर्ल्ड, what is the purpose of our life, particularly the human life, and what is the purpose of all this world, ye sab kyon banaya jisne bhi, yadi kisi ne banaya to। To ye dono cheezon par science wale bhi batke hue hain, unhe to ye malum hai this is a very wonderful design। Pichli baar bhi main bataya tha, ye prithvi surya ke charon taraf ghoom rahi hai 1,00,000 kilometer prati ghante ki gati se, which is about 100 times faster than our modern jet planes। It's a gigantic ball, about 7,000 kilometer diameter, running at such a gigantic speed। और जो एक साल की इसकी परिधि है सूर्य के चारों तरफ की, उसमें इतना precise है कि last year all the scientists gathered, उन्होंने कहा हम सब अपनी atomic clock को 1 second आगे कर देंगे, क्योंकि द टाइम द अर्थ टेक्स 365 डेज 8 hours 22 मिनट्स एंड सेकेंड्स, इट इज सो प्रिसाइज, हमें अपनी घड़ियां थोड़ी एडजस्ट करनी पड़ती हैं उसके हिसाब से। तो इतना कुछ प्रिसीजन है इस संसार में, इतनी बड़ी बड़ी बॉडीज का भी टाइम फ्रैक्शन में इतना है, तो सबको बड़ी आस्था है, और उसी आस्था के बल पर हम कहते हैं कल सूर्योदय इतने बजे होगा। ऑफकोर्स हमारी मैथमेटिक्स अच्छी है, वी कैन प्रेडिक्ट इट, लेकिन हमारी इतनी मजबूत आस्था है कि कल भी सूर्योदय निश्चित इसी समय होगा, क्योंकि जो कहता है उसका कभी उसमें गड़बड़ नहीं होती है। तो एक चीज हमारी चेतना है, और एक है बड़ी ही इनफाइनाइट अजीब सी चेतना जिसके कारण ये संसार चल रहा है, जगत में सब व्यवहार हो रहे हैं। तो इस दो चीज पर बड़े बड़े साइंटिस्ट भी अटके हुए हैं। तो इसलिए हम एक आय समाज में जो महर्षि दयानंद की स्थापित संस्था है, उसका एक हिसाब है कि हम वी आर नॉट क्वाइट ए फेथ बेस्ड रिलीजन। मैं आपको समझाने के लिए समझाता हूं कि जो साइंस का जो खेमा है, आप हम उसको सबको स्वीकार करते हैं, हम उसको पूरी बात स्वीकार करते हैं, क्योंकि वट एवर इज फैक्ट वी एक्सेप्ट इट। हम बस कहना चाहते हैं कि इट इज नॉट विदाउट ए कॉज। जैसे इसको बनाने वाला एक बढ़ई था, मैंने उसे देखा नहीं, देव जी ने किसको कॉन्टेक्ट दिया, कौन परचेज ऑर्डर ले गया, कौन बनाया, हम नहीं जानते। मैं तो 2 साल पहले ही आया, पर मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूं सम कारपेंटर मेड दिस डेस्क, इजंट इट? नोबडी विल डिनाई इट, कोई आप मेरी बात को टोकेगा नहीं। वैसे ही जगत को भी एक बनाने वाला है, हम इतना ही कहना चाहते हैं। वो एक इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है, उसको संभालू मैं, जैसे कारपेंटर को इस दिमाग में इसकी डिजाइन थी, उसके दिमाग में सारा कुछ डिजाइन है और उसके अंदर एबिलिटी है। एक कॉन्शियसनेस क्या है? ज्ञातत्व, भोक्तत्व, कर्तृत्व। आई हैव एबिलिटी टू नो, एबिलिटी टू एक्ट एंड एबिलिटी टू एक्सपीरियंस द व्हाट इवेंट्स गो थ्रू, इजंट इट? सो दैट इज व्हाट इज माय कॉन्शियसनेस। और परमात्मा में भी वो ज्ञान बड़े अनोखे ढंग से है, क्योंकि हमें ज्ञान हमने प्राप्त किया जब ये चीज बनी बनाई थी। लकड़ी तो पहले से बनी बनाई आई है, हम किसी ने लकड़ी नहीं बनाई है, लकड़ी को हमने जाना है। वुड साइंस इज अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन परमात्मा ने वुड साइंस भी बनाई और वुड भी बना दी, है ना? तो उसका ज्ञान थोड़ा अलग तरह का है, उसका कर्म भी अलग तरह का। कारपेंटर ने जब इसको बनाया तो थोड़ी दूर पर है, ही यूजेज एन इंस्ट्रूमेंट एंड ही कट्स द वुड इन टू पीसेज एंड देन ब्रिंग्स देम टूगेदर, नेल्स देम डाउन एंड ऑल दैट। ही इज एक्टिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस एंड ही नीड्स एन इंस्ट्रूमेंट। परमात्मा का एक्शन थोड़ा अलग सा है, वो सब चीज के अंदर घुसा हुआ है। विश्व प्रवेश ने इसको विश्व कहते हैं, क्योंकि वो सबके अंदर प्रवेश किया हुआ है। ही इज द प्राइम मूवर, है ना? तो बिना ज्ञान और कर्म के कोई चीज बनती नहीं है, नॉट ओनली फॉर द मैन मेड वर्ल्ड बट ऑल्सो फॉर द यूनिवर्स। तो इसीलिए हम ईश्वर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमारी उस सत्ता में विश्वास है। लेकिन आप केवल आस्था और विश्वास में रह जाओगे तो यू विल ऑल्सो बी अ फॉलोअर ऑफ फेथ बेस्ड रिलीजन। फिर आप में और ये जो दूसरे मंदिर मस्जिद चर्च में जाने वाले लोग हैं उनमें कोई अंतर नहीं होगा। आई एम सजेस्टिंग यू एक्सेप्ट इट एज ए बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल के अंत में क्या होता है? इट हैज टू बी एविडेंस बेस्ड। अभी आपने कहा ईश्वर को हमने अस्यूम किया, यू हैव टू देन वन डे वेरीफाई इट एंड वैलिडेट इट। बिना वैलिडेशन के साइंस कम्युनिटी आपकी बात नहीं मानेगी। तो उसका वैलिडेशन कैसे होता है? ईश्वर उपासना से। इसलिए मैं ईश्वर उपासना पर आपको बहुत जोर दे रहा हूं। आप खाली ईश्वर को मानते रह जाओगे, तरह तरह की कहानी किससे बोलते रह जाओगे, प्रार्थना करते रह जाओ, आपका जीवन अच्छा बीतता जाएगा, लेकिन मनुष्य जीवन का जो सच्चा सदुपयोग है उससे आप वंचित रह जाओगे। कैसे वंचित रह जाओगे? जैसे एक बच्चे को, पिछली बार भी मैंने कहा, आपने गुजरात और उधर पौंडीचेरी के बच्चे अनाथ बच्चों के लिए अनाथालय तो खोल दिया, लेकिन आपने अपने आप पर ध्यान नहीं दिया कि आप भी तो अनाथ हो। जिस बच्चे को माता पिता की गोद नहीं मिलती वो अनाथ है। यदि आपको अनाथपन से हटना है तो एक ही रास्ता है, उस पिता परमात्मा की गोद में जाना, नहीं तो आप भी अनाथ हो। तो इसलिए ये ईश्वर उपासना बहुत आवश्यक है। और आप अपने आप को एक रिलीजियन, फेथ बेस्ड रिलीजियन का हिस्सा मत समझिए। दिस इज प्योर स्पिरिचुअल साइंस वी आर टॉकिंग अबाउट। तो हमारे यहां मेटीरियल साइंस भी है, स्पिरिचुअल साइंस भी है, दोनों को हम साथ लेकर चलते हैं, तभी अभ्युदय और निश्चय की प्राप्ति होती है, तभी आपका ये जीवन भी सुखी होगा और अगला भी, जो जहां से तो एक दिन जाना ही है, वो परलोक भी आपका सुखी हो जाएगा, यदि आप इन दोनों का अच्छी तरह से समन्वय कर सको। तो ये हमारे मैसेज का मुख्य आशय है। पिछली बार मैंने आपसे 2 मंत्रों की चर्चा की थी, क्योंकि मैंने 4 हफ्ते में 2-2 मंत्र चुने हैं, तो ये जल्दी से रिव्यू कर रहा हूं। पिछली बार हमने कहा विश्वानी सवितर विश्वानी दुहितानी प्रयास। मैं आपके सामने ये भाषा ऐसे रखना चाहता हूं कि आपके अंदर थोड़ा विश्वास आए। यदि आपका हिंदी का भी थोड़ा स्तर अच्छा है तो आप इसको पकड़ लेंगे, है ना? ये असल में हमारी असली मातृभाषा है। स्तुता मया वैदा वेद माता प्रचोदयंताम पाव मानी द्विजा। ये वेद माता हमारी माता है, ये जो हमसे बोल रही है ये हमारी मदर टंग है। यदि आप थोड़े उससे कनेक्ट हो जाएंगे ना, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो देखिए, जैसे आप समझेंगे आपकी उपासना अच्छी होगी, जैसे आप उपासना में बढ़ोगे आपको ज्यादा ज्यादा समझ में आएगा। ये सब चीज कैश 22 का मामला है, आपको कहीं से शुरू करना है तो आप इसका अच्छा उपयोग कीजिए। तो यहां देखिए, विश्वानी दुईतानी पयास, विश्व यानी सकल, सर्वाणी साई बुराई, दु हमेशा प्रीफिक्स निगेटिव के लिए आता है दुख के लिए, दुईतानी बुराइयां, महर्षि दयानंद ने अर्थ किया है दुर्गुण, दुख दुर्गुण और दुर्व्यसन, तो समस्त बुराइयां पया यानी पये चली जाएं। सीधा सदा अर्थ है विश्वानी दुईतानी पया सुअर, साई गड़बड़ साई बुराई मुझसे दूर जाए। इससे हमने कहा सविता देव, सविता कौन है? पैसा वो शब्द आप जानते हैं, व्हेन ए यंग वुमन इज अबाउट टू डिलीवर, पैसा वो पीड़ा हम जानते हैं, तो सब वही शब्द है सविता। वो सविता है जिसने न केवल मुझे जन्म दिया, मेरी मां को भी जन्म दिया, सबको, सारे मानव समाज को, पशु पक्षी को, सारे जगत को जिसने जन्म दिया, उसका नाम है सविता। देव, देव में देता, जो देता है उसको कहते हैं देव। देखिए आपको हिंदी अच्छी आती है, आप आयत लगा लेंगे, सीधी सी बात। हे सविता देव, तुमने हम सबको जन्म दिया, तुम इतना कुछ मुझे देते हो, जैसे एक छोटे बच्चे को माता पिता से सब कुछ मिलता है, मुझे अब तुमसे सब कुछ मिल रहा है, अन्न जल वायु सब मिलता है, लेकिन मैं जितनी भी कोशिश करूं कहीं ना कहीं दुख आ ही जाते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको दुख नहीं आते। तो ये हमारे ये 8 मंत्र शुरू, एट द आउटसेट द स्टेटमेंट इज कि तुम ही मेरे दुखों से मुझे छुटकारा दिला सकते हो, संसार में और कोई नहीं है, मैं बहुतों की शरण में गया लेकिन उसकी भी पास दुख आ जाते हैं, तो मेरा दुख क्या हटाएगा जब उसके भी अपने दुख हैं। अंत में मैं अब तुम्हारे पास आया हूं, तुम मेरे समस्त दुखों को ही नहीं सारी गड़बड़ निगेटिविटी भी हटा सकते हो, और क्या जो कुछ भी भद्र है अच्छा है, तत् न है हमारे लिए, वह हमारे पास आ जाए। बहुत सीधी सारी बात कह रही है, हे परमात्मा सविता देव, तुम मेरे समस्त दुखों को दूर करो, अच्छे अच्छे सुख मुझे दिलाओ। अब यहां बहुत सारे रहस्य हैं, इसलिए तो पहला मैंने कहा, देखिए पहले निगेटिविटी, एक बर्तन में दूध लेना है तो पहले बर्तन साफ करना पड़ता है, पहले दुख दूर कीजिए, पहले गंदगी हटाइए, तभी बच्चे को नए कपड़े पहनाने हैं तो आप बच्चे से बोले बेटा पहले नहा लो फिर ये कपड़े पहनना, है ना, शरीर की गंदगी हटाओ फिर नए कपड़े पहन लेना। तो ये हमेशा यू ईट बिफोर यू ईट ब्रश योर टीथ, ये छोटी छोटी बातें में ये सब रहस्य चला हुआ है ना, कोई नई बात नहीं है, पर इसको थोड़ा ग्रहण करना। और विश्व धातु के बारे में मैंने कहा प्रवेश ने, बुराइयों के साथ उन्होंने लगा दिया विश्वानी, क्योंकि बुराइयां बिना बताए आ जाती है, हमें पता नहीं चलता है, हमें बड़ा सजग रहना पड़ता है। ये कपड़ा हमने पहना आज सुबह, हम बहुत सावधानी से जीवन बिताए, शाम होने तक इसमें गंदगी आ जाएगी, इट विल कलेक्ट ऑल काइंड्स ऑफ डस्ट एंड डर्ट एंड व्हाट नॉट, फिर बड़ा मेहनत करनी पड़ती है कपड़े साफ करने में। देखिए बुराई बहुत आसानी से आती है और भलाई लाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है ना, तो वही इसका आशय है। विश्व धातु प्रवेश ने, एक एक शब्द में बड़ा गहरा रहस्य है, यहां सर्वाणी में लिख सकते थे लेकिन परमात्मा ने लिखा विश्वानी देव, विश्वानी दुईतानी, क्योंकि ये जो दुईत चीजें हैं ये बिना बताए बड़े चुपके से आती हैं, हमें पता भी नहीं चलता है ना। प्रवेश ने, विश्व में भी क्या है प्रवेश, हमारा वेशभूषा में भी ये है, आप हिंदी का थोड़ा बहुत देखेंगे, ये धातु कोश से हमने ले लिया है तो प्रवेश से आप समझ गए, ये सारा विश्व विश्व क्यों कहलाता है, इसमें परमात्मा का प्रवेश है सब में, ये भाव है। फिर हमने कहा बॉडी, परमात्मा भी ऐसा है हमें छोड़ता नहीं, परमात्मा ने, हमने सांख्य का एक सूत्र शायद मैंने बताया होगा, मैं बहुत बताता हूं, वो क्या कहा उसमें, सुषुप्ति समाधि मोक्षेशु ब्रह्म रूपता, सुषुप्ति और समाधि को समकक्ष रखा है, हमारे यहां सुषुप्ति का बड़ा महत्व है, आप सब नींद पर बहुत विश्वास कीजिए, और माता पिता जानते हैं बच्चा सो रहा है तो कभी नेवर टू डिस्टर्ब, और ये केवल बच्चे के साथ मत कीजिए, इफ एनीबडी इज इन स्लीप प्लीज अनलेस इट इज हाई लेवल ऑफ इमरजेंसी यू शुड नेवर डिस्टर्ब स्लीप, है ना। सुषुप्ति का बड़ा महत्व है हमारी फिलॉसफी में, सुषुप्ति के लिए कितने शब्द हैं, शयन है, निद्रा है, स्वापीति है, हमारे ऋषियों ने सुषुप्ति पर बहुत रिसर्च किए हुए। तो ये सुषुप्ति के बारे में क्या कहा उस समय, कि उस समय भी बॉडी एंड माइंड आर इनएक्टिव। देखिए वही हमने बात की शिशु से मेडिटेशन उपासना की भी बात। तो सुषुप्ति एक ऐसी चीज है जो आप चाहें या ना चाहें परमात्मा आपको अपनी गोद में ले लेता है। तो नींद छोटी मोटी चीज नहीं है, नींद को भी आप समझिए परमात्मा आपकी गोद, परमात्मा की आप गोद में। पर वो एज ए डिफॉल्ट सबको मिल रही है, पशु पक्षी को भी मिलती है। वो लेवल वन की चीज है, लेवल वन की उपासना है। उसमें यू आर नॉट इन कॉन्शियस मोड, आप बेसुध हैं, आपको भी नहीं पता है कि आप परमात्मा की गोद में, लेकिन वो परमात्मा की गोद है। जैसे घर में एक नालायक बेटा है, वो अपनी मां के पास कभी जाता ही नहीं, कभी नहीं जाता, अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता है, पढ़ता है, सब चीज में अच्छा है, लेकिन मां के पास नहीं, उसके पिता उसके पास 5 मिनट भी नहीं है मां के पास, मां की गोद में बिताने को। वो सो जाएगा तो उसकी मां तो मां है, वो पास में जाएगी, उसको गोद में ले लेगी, उसके सिर पर हाथ फेर देगी। हम सब उस परमात्मा के ऐसे ही नालायक बच्चे हैं। दिन में हमें कभी उपासना का ध्यान नहीं आता, रात में वो हमें अपनी गोद में ले लेता है। आप इसको सुषुप्ति को ऐसे समझिए कि ये एज ए डिफॉल्ट हम सबको मिली हुई है। हम चाहे नास्तिक हों, चाहे ईश्वर को गाली देते हों, चाहे ईश्वर का ध्यान न करते हों, उसकी उपासना न करते हों, फिर भी वो हमें अपनी गोद में ले लेगा। यह है सुषुप्ति। और उस समय भी ये बहुत कुछ काम करता है हमारे, आवर बॉडी इज डिटॉक्सिफाइड इज इट नॉट, अर्ली मॉर्निंग वी हैव टू गो टू द रेस्ट ट्यूब एंड ऑल दैट। तो उसने जो प्रोसेसिंग की है वो सब बहुत आवश्यक है। वो सब चीजें ना हो, ब्रेन में भी साइंटिस्ट बोलते हैं न्यूरॉन्स आर रीवायर्ड, ए लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंस ड्यूरिंग दो 6-7 आवर्स ऑफ आवर स्लीप। स्लीप के बारे में इतना कहा तो ये भी कह दूं, सुषुप्ति वो स्लीप है जब डीमलेस स्लीप है ना। तो हमारे यहां ये मान्यता है स्वप्न जब नहीं आए, आप डीप स्लीप में हैं, तो वो अच्छी नींद मानी जाती है। क्योंकि जब आप स्वप्न देख रहे हैं, योर माइंड इज अगेन फंक्शनिंग, सो दैट इज नॉट ए वेरी गुड क्वालिटी स्लीप। तो सुषुप्ति का बहुत भान है और आप सब इसका ध्यान रखा कीजिए, जल्दी सोने जाइए 9, 10, 11 बजे, लेटेस्ट 10 बजे, क्योंकि जितनी देर से आप सोएंगे नींद की क्वालिटी घटते जाती है। परमात्मा ने दिन बनाया है काम के लिए, डे इज टू वर्क, नाइट इज टू स्लीप, यू शुड बी उस रिदम में आना चाहिए। तो मिड डे इज एक्टिव डे, फुल डे इज इट नॉट, सो मिड नाइट शुड बी मिडिल ऑफ द नाइट। तो ट्राई टू स्लीप एज मेनी आवर्स सच दैट द मिड आवर ऑफ योर स्लीप इज कोइंसाइडिंग विद मिड नाइट, बट दैट इज इम्प्रैक्टिकल। यदि किसी की 6 घंटे की नींद है, 7 घंटे की, तो सबसे अच्छा है 8:30 से 3:30, लेकिन आजकल तो इतना प्रैक्टिकल नहीं है। फिर भी मैं कहूंगा 9 नहीं तो 10 बजे तक आप अवश्य सो जाओ, क्योंकि बाद में जितना आप देर सोएंगे आपकी नींद की क्वालिटी घटते जाएगी, है ना। फिर आप सुबह उठेंगे, कोई स्वप्न याद आया है, कुछ ऐसा है, इतने घंटे सो लिए लेकिन फिर भी लगता है कि पूरी थकान नहीं होती, उस तरह की चीज। तो जो मैंने नींद की महिमा गाई है वो सुषुप्ति की है, बिस्तर पर पड़े रहने की महिमा नहीं है कुछ, है ना। तो व्हाट आई वाज सेइंग वाज बॉडी इज डिटॉक्सिफाइड डूइंग स्लीप। तो वो तो डिफॉल्ट में उपासना थी, असली जो ईश्वर उपासना हम सीख रहे हैं यहां पर, उससे क्या होगा, उस क्षणों में भले ही 2, 4, 5 मिनट, उसमें योर माइंड विल बी डिटॉक्सिफाइड। इतनी पावरफुल चीज है, मैं आपको क्या बताऊं इसके। जब हमारी क्लासों में हम बहुत बोलते हैं इसके बारे में, पर आप इसको पूरा समझ के जाइए। अब यहां कहा भद्यम आसुआ, हमने परमात्मा पे छोड़ दिया, हमने नहीं कहा कि मुझे घर दो, मकान दो, ये दो वो दो, हमने कहा तू ही जानता है मेरे भले के लिए क्या है, जो तुम्हें समझ में आए वो मुझे मिले, है ना। तो बच्चा भी मां से कुछ नहीं मांगता, उसे पूरा विश्वास है मां के पास, मां के थैले में सब कुछ है, और वो कॉन्फिडेंट घूमता रहता है बाजार में उंगली पकड़ के, उसे मालूम है सही समय पर सही चीज मिल जाएगी। तो ये एक आस्था, ये विश्वास लाना है आप। अब देखिए हम आ तो गए हैं इस संसार में, लेकिन हमारे आने के पहले परमात्मा ने कैसे इस संसार को बनाया और तैयार किया। हिरण्यगर्भ, हिरण्य कहते हैं ये चमक दमक वाला संसार, स्वर्ण को, गोल्ड को भी हिरण कहते हैं, है ना। तो ये सारा चमक दमक वाला संसार उसके गर्भ में है ना। वो इससे भी बड़ी महान सत्ता है, एक पाद पे वस्तु बोलते हैं, द होल यूनिवर्स विच ऑल्सो हम बिलियन ईयर्स अवे, लाइट ईयर्स अवे, ये सब बोलते हैं एक चौथाई है, तीन चौथाई परमात्मा इसके भी पे है ना, पर ब्रह्म का कॉन्सेप्ट है। मैं उस फिलॉसफी में नहीं जाया, मैं कहना चाह रहा हूं कि यह सारा संसार जिसके गर्भ में है, इसलिए संसार जगत को ब्रह्मांड भी बोलते हैं, जैसे ये उसका अंडा है ना। समवर्तत यानी यह एग्जिस्ट करता है, करता आया है, अगे आगे से पहले से है ना। भूतस्य जातः, ये सारा जगत पंचभूत से बना है, जातः यानी जय यानी जन्म देने से, इस पंचभूत से बने समस्त जगत को उसने जन्म दिया। बहुत छोटी, देखिए हिंदी में आपको आती हो तो आप समझते जाएंगे, पति एक, एक है पति, हो पति का मतलब होता है रक्षक, राष्ट्रपति है राष्ट्र का रक्षक, राष्ट्र के संविधान का रक्षक है ना। तो पति एक है आसी, वह एक बात है, इज द सोल अथॉरिटी फॉर द एंटायर यूनिवर्स है ना, उसकी ही इच्छा से सब कुछ यहां होता है। एंड ही सस्टेन्स इट सदाधार पृथ्वी, उसने इस पृथ्वी को धारण किया हुआ है। नॉट ओनली दिस अर्थ ऑल्सो द सन उत द्याम उत इमाम, तमाम चीजें जो भी एक्सेट्रा में सब आ गया। तो ये हम आए इस जगत में, इसके पहले सूर्य बना, सूर्य के बाद पृथ्वी बनी, और ये सारा साइकिल है। पृथ्वी का एक थोड़ा स्लैंट है 22.5 डिग्री, जिसके कारण वेयर योर सीजन्स आर टेकिंग प्लेस, ऑल दिस इज वंडरफुल थिंग ही हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बिफोर आवर अराइवल। आज हम ये तीसरे मंत्र पर विचार करते हैं, उसके पहले आई वॉन्ट टू गिव यू अनदर एनोलॉजी, बिकॉज आई ऑलवेज लाइक टू स्पीक इन टर्म्स ऑफ मदर एंड चाइल्ड। उसको भी हम कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। अभी दो सप्ताह पहले एक मंत्र भी मैंने यहां रखा फादर्स डे पर, त्वम ही न पिता, त्वम ही न पिता वसो त्वम माता सत्कृतो, ऋग्वेद का मंत्र है ना। तो वही पिता है, वही माता है, बल्कि उसी के कारण हम पिता भी बनते हैं माता भी बनते हैं। तो जब हम माता पिता बनते हैं तो उसका एक अंश में गुण हमारे अंदर आ जाता है, तो हमारे अंदर भी वो देवत्व आ जाता है, मात्य देवो भव पित्य देवो। तो वो जब चाहता है वो अपना एक गुण अंश में हमें दे देता है, उसका ऐसा डिजाइन है। तो मैं आपको थोड़े जो दो मंत्र अभी आपके सामने रखे हैं उसको देख रहा हूं। व्हाट इज द फर्स्ट मंत्र सेइंग, टेक अवे पेन एंड गिव पीस एंड हैप्पीनेस है ना। जिस्ट में हम कहना चाहें तो विश्वानी दुरीतानी पयासु यद भद्रम आसु का यही अर्थ है। फिर हिरण्यगर्भ का अर्थ है यू मेड द अर्थ लिवेबल विच इज सपोर्टेड बाई सन इन इट्स टाइम। अब देखिए एक बच्चा, एक नवयुवक युवती का विवाह हुआ, अब उनके घर में एक संतान आने वाली है, मां की कोख में है, तो अब उसके पर्सपेक्टिव से हम सोच रहे हैं। बट वी आर ऑल्सो पेरेंट्स, वन थिंग वी नो, एज ए चाइल्ड जब भी हमें कोई कष्ट दुख था तो हम कहां जाते थे, हम अपनी मां या पिता के पास जाते थे है ना। तो नाउ यू लुक एट द चाइल्ड फ्रॉम चाइल्ड्स पर्सपेक्टिव, द पेरेंट्स टेक अवे ऑल पेन एंड गिव हैप्पीनेस। जो बच्चे का एक छोटा सा बॉक्स है जिसके अंदर वो सोचता है, कंफर्ट जोन है उसका, अपने माता पिता के छोटे से घर में रहता है, तो उसके लिए उसके माता पिता ही सर्वोपरि हैं, कि जब भी कुछ कष्ट है तकलीफ है अपने माता पिता के पास जाता है और उसका कष्ट दूर करते हैं और बदले में उसको अच्छी चीजें, सुख देने वाली चीजें देते हैं ना। तो दैट इज वेरी नेचुरल एंड वी ऑल हैव गॉन थ्रू इट, देयर इज नथिंग बिग अबाउट दैट। एंड दैट यंग मैन एंड यंग वुमेन, now before the arrival of the child, what do? They made the home ready for the child's arrival. अभी माँ गर्भवती है, अब धीरे धीरे बच्चों के लिए चीज लाने लगती है, छोटा सा पालना चाहिए, ये चाहिएगा वो चाहिएगा, या ये छोटा अपार्टमेंट है, let's move to a bigger house, you know all these planning are done. तो आप ये दो मंत्र अभी जो हमने सोचे उसको आप इस दृष्टि से भी देख सकते हैं। तो जो कहानी मैं बनाऊंगा उसको आप ईश्वर अपने साथ भी देख सकते हैं, और जो मदर चाइल्ड या पेरेंट्स और चाइल्ड की जो कहानी है उस पर भी आप लागू सके। ये परमात्मा ने ये सब इसलिए बनाया है, जो मेरा और मेरे माँ और पिता के साथ संबंध है उसी को एक्सट्रापोलेट करना है। मैथमेटिक्स में हम लिमिट लेते हैं आगे की, खूब आगे की इन्फिनिटी पर लिमिट लेंगे, हम सीधे परमात्मा तक पहुंच जाएंगे है ना। माता और पिता फाइनाइट है, उनकी सब सामर्थ्य सीमित है, लेकिन वही लिमिट आप यू टेक इट टूवर्ड्स इन्फिनिटी यू विल मीट द जगत पिता जगत अम्बा माता, है ना। तो ये लिमिट लेना आप सीख जाएंगे और ये इट इज वेरी इजी एंड नेचुरल फॉर ऑल ऑफ अस। मैं एक थोड़ी सी बात यहां कहना चाहता हूं आज के दो मंत्रों के पहले। ज्ञान कर्म उपासना थ्री डायमेंशन ऑफ आवर लाइफ एंड इट इज एप्लीकेबल इन एनी रिलेशनशिप। अब मेरे पिता जीवित नहीं है, समझिए एक समय था, समझिए मेरे साथ ऐसा हुआ भी नहीं, मेरे पिताजी की मौत बड़ी अच्छी थी, ही डाइड इन हिज स्लीप इटसेल्फ। बट सपोज देयर इज योर ओल्ड फादर हु इज ऑलमोस्ट इन हिज डेथ बेड, यू कैन विजुअलाइज दिस कंडीशन, 90 ईयर ओल्ड और 85 व्हाटएवर इट इज, डॉक्टर्स ने भी कह दिया अब ज्यादा दिन नहीं है, घर में है, एक बेटा है उनका बट ही इज वेरी वेरी बिजी, प्रोफेशनल है, उसकी प्रोफेशनल लाइफ है, पर हां उसके पास संपन्न है, सामर्थ्य है, उसने 24 आवर केयर रख दी है, नर्सिंग केयर सब इंतजाम है, कोई दवा चाहिए डॉक्टर घर में आते हैं सब है, उसका ज्ञान भी पक्का है, उसे मालूम है ही इज माई फादर, वॉट ऑल इज द नीड एट दिस क्रूशियल आवर, एंड ही हैज डन, ही हैज टेकन एक्शन, दवा का, औषधि का, नर्स का, केयर का, डॉक्टर का, सबका इंतजाम है, बट वन थिंग इज मिसिंग, ही इज सो बिजी, वो बैठता नहीं है, उसके पास 15-20 मिनट अपने पिता के पास बैठने को टाइम नहीं, उसे कोई बात भी करे तो कहता है मैंने सब इंतजाम किया हुआ है, और पिता बेचारा क्या चाहता है कि मेरा बेटा यहां बैठे, उसे एक दो बातें मुझे बतानी है, लेकिन ही इज अनेबल टू डू इट। तो अभी क्या चीज कमी है यहां पर, ज्ञान बड़ा परफेक्ट है, स्वयं भी में भी कोई कमी नहीं है, व्हाट इज मिसिंग इज इन उपासना, नहीं तो आप कहेंगे कि ये आदमी कुछ इसका लाइफ में बैलेंस नहीं है, ही इज नॉट सक्सेसफुल, ही हैजंट इवन अंडरस्टूड दिस मच कि व्हेन हिज फादर इज इन दिस सिचुएशन सम हाउ ही शुड फाइंड दोज 15-20 मिनट्स, वो उसके अपने बिजनेस मीटिंग और टूर्स चलते रहते हैं, उसके पास टाइम नहीं है, तो आप कहेंगे इसके यहां कुछ गड़बड़ है, इसको उपासना नहीं मालूम, उप और आसन। तो आप किसी भी रिलेशनशिप में आप देख लें, हस्बैंड एंड वाइफ, फादर एंड सन, फादर एंड डॉटर, मदर एंड सन, एनी ब्रदर सिस्टर, टू फ्रेंड्स, उसमें भी ज्ञान कर्म के बाद उपासना इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। इफ यू डोंट डिवोट दोज इंटीमेट मोमेंट्स, यू कैन नॉट नर्चर दैट रिलेशनशिप प्रॉपर। वही चीज यहां ईश्वर के साथ भी लागू होती है। तो मैंने मदर चाइल्ड की बात की, तो मैंने वर्ल्डली डोमेन में भी ये थ्री डायमेंशन बताए हैं आपको। अब लेट्स गो टू द आउट ऑफ द वर्ल्ड। आज के ये दो मंत्र रखे हूं मैं आपके सामने। जब परमात्मा ने वो जगत बना दिया, अब हमें वो भेज रहा है, मेरे आत्मा को यहां भेज रहा है, यह आत्मदा बलदा, इस आत्मा को दे यानी देना, उस आत्मा को क्या दिया उसने, उसने बहुत कुछ दिया जिससे कि मुझे बल मिले, तो ऑफकोर्स बॉडी एंड माइंड, तो इसकी मैं लंबी चौड़ी व्याख्या नहीं कर रहा, यू नो हाउ इंपॉर्टेंट ऑल दीज एसेट्स आर, आवर आईज, आवर ईयर्स, दिस एंड दैट, एंड ऑफकोर्स आवर ह्यूमन माइंड विच इज मोस्ट पावरफुल सिस्टम। ये सब परमात्मा ने एक छोटे से आत्म तत्व के ऊपर, पहले तो मन का खोल लगाया, माइंड डोमेन के बारे में हम कभी कभी मंत्र बोलते हैं, तन्मे मन शिव संकल्प मस्तु, फिर उसके बाद ऊपर से ये पूरा इतना बड़ा ढांचा बनाया, और हमें पहले तो जब मन का बनाया तो मुझे अपने पिता के शरीर में भेज दिया, तो आपको मालूम यहां जब मन हम बात करें हमारी फिलॉसफी में, तो दिस इज नॉट माइंड, ये ब्रेन है, इसको मस्तिष्क बोलते हैं, मन बोलते हैं दैट टाइनी माइंड डोमेन, वो इतना छोटा है कि वो भी नहीं दिखाई देता, आत्मा का तो सवाल ही नहीं उठता, वो मन भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो पिता के शरीर में भी मैं मन के खोल के साथ कैसे आया किसी को नहीं दिखाई दिया, फिर उसने फिर मां के शरीर में मैं पहुंचा, वहां भी ये बॉडी इज ग्रोइंग, थोड़ी विकसित हो रही है 9-10 महीने के बाद, देन आई हैव एन इंडिपेंडेंट स्टेटस, इंडिपेंडेंट एंटिटी। तो ये परमात्मा का डिजाइन है, क्योंकि मैं अकेला ही आत्मा है तो उसमें कोई ज्यादा सामर्थ्य नहीं है, ज्ञान और कर्म वो नहीं कर सकता जैसे शुरू में मैंने कहा, तो उसको बॉडी और माइंड के एसेट्स दिए गए हैं ताकि वो संसार में यह सारा काम अपनी गतिविधि कर सके। इसका वर्णन किया या आत्मदा बलदा ही स्ट्रेंथन्स आवर टाइनी सोल विद द एसेट्स ऑफ बॉडी एंड माइंड. दे आर वेरी फैंटास्टिक इंस्ट्रूमेंट्स. इसके बारे में आप भी ज्यादा जानते हैं, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं. और फिर उस परमात्मा का वर्णन किया, यस्य विश्व उपासते, यस्य विश्व, सारा विश्व, विश्व में सब चीज, चिड़िया पक्षी भी, चिड़िया भी गाती है तो आप समझिए परमात्मा की उपासना में लगी, क्योंकि दे आर ऑल डूइंग एग्जैक्टली द वे दे आर प्रोग्राम्ड. कोई अपनी गलत नहीं, गाय भी बोल रही है, अपने बछड़े को बुला रही है, सब उपासना है. और हां, जो अच्छे अच्छे लोग हैं, प्रशिषम यस्य देवा, जो हमारी ह्यूमन सोसाइटी में ही उत्कृष्ट सुपीरियर क्वालिटी के लोग हैं, उनको देवता हम कहते हैं, जिन्हें देने में मजा आता है ना. यहां बहुत से लोग 10 बजे से पहले ही आ जाते हैं. क्यों आते हैं? भाई हमें यहां कुछ काम करना, कोई देखने वाला नहीं है पर हमें यहां काम करना. वो अपना समय देते हैं, अपना श्रम देते हैं. तो ये सब देवता कोटि के लोग हैं जिन्हें देने में मजा आता है, वो किसी से लेते नहीं कुछ. तो यस्य प्रशिषम यस्य देवा, ये देवता कोटि. प्रशिषम शब्द को भी आप देखिए, आप थोड़ा अंदाज लगाएंगे आप इसका अर्थ समझ जाएंगे. मैं आपको 2 सेकंड का समय दे रहा हूं, एक शब्द बोलने वाला हूं, आपके कुछ के ध्यान में आया होगा, प्रशंसा है ना, प्रशंसा इससे मेल खाया. देखिए आपकी हिंदी अच्छी है, आप पकड़ लेंगे. थोड़ा आप उपासना में जाओ, आपको सारे रहस्य समझ में आएंगे. और मैं इसका उदाहरण हूं, मैंने संस्कृत नहीं पढ़ी है, मैंने कोई गोकुल में कुछ संस्कृत नहीं पढ़ी है, और जो वेद मंत्र के रहस्य मैं जानता हूं वैसे बहुत कम लोग जानने वाले आपको मिलेंगे. ये सब ईश्वर उपासना का फल है, आपको सब कुछ मिलेगा, आप उसकी गोद में जाना सीखिए. यही हम बार बार कहना चाह रहे हैं, यस्य छाया अमृतम, यस्य छाया अमृतम, जिसकी छाया तो हम जानते ही हैं, जिसकी शैडो अमृत है. अब अमृत शब्द के भी क्या क्या अर्थ निकलेंगे आप जानते हैं. अमृत को आप अ हटा दीजिए, विच इज नए समास का होता है निगेशन में, मृत, मृत यानी जो मर गया, अमृत यानी जो नहीं मरता है ना. अमृत शब्द का क्या अर्थ हुआ? इमॉर्टल. अब इसका एक और अर्थ निकलेगा, आगे मृत्यु आने वाला है तो दिस इज वेरी मीनिंगफुल मीनिंग, इमॉर्टैलिटी है ना. लेकिन एक और भी चीज है, हम दुनिया में सुख चाहते हैं, लेकिन जितने भी सुख हमें मिलते हैं उनका लाइफ टाइम है, वो थोड़ी देर के बाद उसकी मिठास फीकी हो जाती है, चला जाता है, फिर उसमें ज्यादा मजा नहीं आता. तो एक ऐसा भी सुख है जिसकी लाइफ टाइम इमॉर्टल हो. तो अमृत से अमृत भी हुआ, नेक्टर, इज इट नॉट. तो देखिए शब्द में ही अर्थ निहित है, जो कभी न मरता हो दैट इज इमॉर्टल, जिसका इफेक्ट कभी न मरता हो वह भी अमृत कहलाएगा, जिसमें इतना स्वाद है कि वो स्वाद कभी पीछा न छोड़े, दैट ऑल्सो इज अमृत. जिसकी छाया में, अब देखिए यहां अलंकार कितना बड़ा है, कितना विचित्र भाषा है ये वेद की, जिसकी छाया में रहोगे तो अमृत है. लेकिन अब यहां छाया शब्द हटा दिया है, और यस्य मृत्यु, क्या परमात्मा क्या संदेश दे रहे हैं, इफ यू डोंट केयर अबाउट मी, तुम मेरी उपासना नहीं करोगे तो भी मेरी छाया से दूर नहीं जा सकते, मेरी छाया में ही रहोगे लेकिन तब तुम्हें मृत्यु मिलेगी, इज इट नॉट. तो छाया शब्द यहां भी है, यहां भी है. द मीनिंग इज वेरी एलेगोरिकल, इट इज फैंटास्टिक. ये कभी कभी आएगा, मैं आगे भी बताऊंगा. ये वेद की शैली बड़ी विचित्र होती है, यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु, दोनों बातें कह दी. इट इज ए वाइड स्पेक्ट्रम, इट इज फॉर यू टू चूज. तस्मै देवाय हविषा विधेम, और किसकी हम स्तुति कहें, और किसको हम अपना समय दें, और किसके साथ हम बैठें, आइए उसी की उपासना कहें. ये कस्मै देवाय हविषा विधेम की एंडिंग कई बार आती है, तो ज्यादा इस पर मैं समय नहीं लगाना चाहता. अब उसने मुझे भेज दिया, माँ पिता के शरीर में, फिर माँ के शरीर में, फिर मैं ऐसे ऐसे, और सारे प्राणी जगत को भेज दिया. जैसे इस कारपेंटर ने ये इमेज बना के हमें डिलीवर कर दी, लेकिन अब देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द कारपेंटर एंड दिस डेस्क, देयर इज नो कनेक्शन. यदि आज कुछ बात हो जाए, कुछ वारंटी पीरियड है, तो हम ले जा सकते हैं उसके पास, वो शायद रिपेयर कर देगा. लेकिन ये बनाने वाला बहुत विचित्र है, वो हमें बनाता है लेकिन हमें छोड़ता नहीं कभी, ही इज ऑलवेज देयर। यह एक विचित्र फोर्स है, इसको कहते हैं प्राण। बॉडी माइंड एंड सोल से मैं तो बन गया, लेकिन बॉडी और माइंड से मेरा काम कैसे चल रहा है ये आपने सोचा? काम चल रहा है क्योंकि देर आर लॉट ऑफ फोर्सेज, वाइटल फोर्सेज ऑलरेडी ऑलवेज फंक्शनिंग नॉन स्टॉप, इज इट नॉट? और उनका बड़ा सीधा साधा पैमाना है, सुषुप्ति में आप जाइए, व्हेन समबडी इज इन डीप स्लीप, जब इस स्ट्रक्चर में जो कुछ भी हो रहा है, ऑल दैट इज एट्रीब्यूटेड टू प्राण। मेनली पांच मेजर कंसंट्रेशन है उनके, बट इट इज नॉट कन्फाइंड टू दोज फाइव लोकेशंस ओनली। नर्वस सिस्टम, कार्डियक सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम, रेनल सिस्टम। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये पांच फोर्सेस हैं। और इस पूरे परिवार का नाम यहां आया प्राण, है ना? तो उसने मुझे बना के भेजा, मैं तो आपकी नींद में सो गया हूं, लेकिन आप जानते हैं प्राण का एक थोड़ा सा भी साइकिल, थोड़ा सा भी अस्त व्यस्त हो जाए तो हमें इमरजेंसी केयर में जाना पड़ता है, आईसीयू में जाना पड़ेगा, है ना? दैट इज सच वाइटल, दैट्स व्हाई दिस इज वाइटल लाइफ फोर्स, दैट इज द पावर हाउस। तो ये एक जो स्ट्रक्चर उसने मुझे भेजा है, इसके ये ऐसे ही नहीं काम करे, ये ह्यूस्टन में ऐसे ही काम नहीं चल रहा। यदि यहां का पावर प्लांट बंद हो जाए तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी, सब चीज पावर आउटेज हो जाएगा, बताइए कितनी मुश्किल होगी। तो वैसे ही आप देखिए, इसका एक पावर हाउस है जो बिल्ट इन है, जो नॉन स्टॉप हमेशा काम करता है। तो ही हैज नॉट जस्ट मेड मी एज बॉडी माइंड एंड सोल, ही एंश्योर्स वो 24 घंटे नॉन स्टॉप। मैं तो सोच समझ के कुछ बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, लेकिन मेरी सांस चल रही है, मेरी हार्ट बीट्स आर वर्किंग कॉजिंग ब्लड सर्कुलेशन, ये मैं तो नहीं कह रहा, मेरा ध्यान हुआ नहीं है अभी, कौन कह रहा है? इन ए साइंटिफिक स्पिरिट यू हैव टू आस्क क्वेश्चन, हु इज डूइंग दैट, व्हाट इज दैट फोर्स? उस फोर्स का अंत में आता है वह कर रहा है, उसका नाम प्राण है। तो अब देखिए, He just doesn't send me into the world. He is always with me every moment in the world, in the nature of those vital life forces. Sustains life through vital background forces. अब यहां भी दो हैं, मैं बहुत गहराई में नहीं जाना चाहता, पर देखिए रहस्य बड़ा है, वेद मंत्रों में इतनी गहराई होती है क्या बताऊं मैं। प्राण है जो साइक्लिक फोर्सेज है, जैसे एस्पेट है, सांस बाहर फेंकी, रुकी, फिर सांस ली, ये नॉन स्टॉप साइकिल है। ये सब रिफ्लेक्सिव है, अपने आप हो रहे हैं, हम ध्यान न दें तो भी होते हैं, इसलिए इसको प्राणिक फोर्स बोलते हैं। लेकिन कुछ फोर्स ऐसे हैं जिसको महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में कहा अल्प प्राण, विच इज मोमेंटरीली, अभी कुछ हो जाए मुझे छींक आ जाएगी, है ना? और हिकअप्स, यॉनिंग, ये अल्प प्राण कैसे हैं? दे मेक एडजस्टमेंट सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग्स। कुछ गड़बड़ हो गई है उसको करेक्ट कहते हैं, उसको कहते हैं निमेश, है? जैसे आंखों की पलक ऐसे कोई चीज आने लगे, दिस इज रिफ्लेक्सिव एक्शन। ये साइक्लिक नहीं है कि हर समय अपने आप होता है, एज द सिचुएशन वायरंट्स दीज रिफ्लेक्सिव एक्शंस आर टेकिंग प्लेस, उनको अल्प प्राण कहते हैं। उसको संक्षेप में मैंने बताया निमेश। महत्व, यह सब सीधा साधा शब्द है, महत्व, अपने महत्व के कारण, ऐसे ही फालतू का उसकी मूर्ति बना के हमने उसको नहीं वहां बनाया, उसका महत्व है, सारा संसार उस चलाया है, मेरे प्राणों को भी वो चलाया है। और वो कौन है? एक सत्ता है, दैट फाइनल प्रेसाइडिंग एंटिटी, अल्टीमेट अथॉरिटी, वो एक है। कौन है? राजा है वो, जिसके जिसका शासन पूरे पर चल रहा है, पूरे प्राणी मात्र पर भी और पूरे जगत पर भी, जो पंचभूत वाला जगत है। जगतो बभू, अभी नहीं चल रहा, पहले से चला आया। ये ईशे जो हम सबका स्वामी है, किस किस का, चाहे दो पांव से चलने वाले हों, चाहे चार पैर से चलने वाले हों, उन सबका। अब ये देखिए, प्राणी मात्र का वर्णन आ गया है ना, अभी यह आत्मदा में सारे प्राणी जगत के लिए आया है, उसको बॉडी माइंड सोल के रूप में कंपोज करके वो भेजता है और फिर उसको सस्टेन करता है लाइफ फोर्स को। यू कैन नॉट फॉरगेट इट, और उसने हमें गिफ्ट नहीं दिया, वन टाइम लाइफ की गिफ्ट नहीं दी है, It is every moment that we are receiving gift from Him. उसका हमें ध्यान रखना ही चाहिए. आज मैं इन आठ मंत्रों का आपको बिग पिक्चर देना चाह रहा हूं. सो दैट अब मैं फिर अगले सप्ताह दो मंत्र लूंगा, उसके बाद भी दो मंत्र लूंगा. आई वॉन्ट यू टू हैव द बिग पिक्चर. देखिए हमारे ऋषियों ने क्या, उनकी जबरदस्त मेधा थी, प्रज्ञा थी, क्या बोले हम. 20,000 वेद मंत्रों में से आठ मंत्र हमें चुनकर एक ऐसे सीक्वेंस में दे दिए. इतना रहस्य है कि भाई आपके पास पूरा वेद पढ़ने का टाइम नहीं है, इच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. इन आठ मंत्रों को तो समझ लो और इसको अपने जीवन में अच्छी तरह से धारण कर लो. देखिए इन आठ मंत्रों का भी मैं एक कोशिश कर रहा हूं बिग पिक्चर आपको देने की. पहले मंत्र में एट द आउटसेट हम जगत में हमने आंखें खोली और बहुत सारे दुख भोग चुके हैं, तो हमने कहा हे सविता देव, यू विल टेक अवे माई पेन, गिव मी पीस एंड हैप्पी. You are the one who made this earth livable even before I came here. And that is supported by the sun. This is Prithvi, that is Dhyulok. You sent us empowered with body and mind. देखिए जगत की सृष्टि का वर्णन है. पहले जगत में बनाया सब कुछ, अब मुझे यहां जगत में भेजा है. नंबर थ्री में क्या कहा, पहले सब जगत तैयार कर दिया है, अब तुमने मुझे बॉडी और माइंड के साथ भेजा है. और भेज कर तुम मुझे भूल नहीं गए हो. यू आर एवरी मोमेंट विद मी एज ए पावर हाउस इन द बैकग्राउंड. ये चार मंथ हमने आज देख लिए. अब क्या आने वाला है, अब आने वाला है ये न देव उग्रा पृथ्वी चंद्र. अगला मंथ अगले सप्ताह लूंगा मैं. मेरी सांस तो चले ही है, सांस ऐसी ही चलती है क्या. अभी आयुष्मान की तरफ से भोजन की व्यवस्था नहीं हो तो बड़ा मुश्किल हो जाए. हमारे शतपथ ब्राह्मण में आया अन्न वे प्राण. प्राण कैसे चलते हैं, अन्न खाने से. और सारी दुनिया एक गरीब आदमी से ही पूछे भाई तू इतनी मेहनत क्यों करता है, बोलता पेट के लिए, है ना. यदि हमें भोजन किए बिना सब मिल जाता तो बोलिए कितना लड़ाई झगड़ा होता, लोगों के पास इतना फ्री टाइम होता कि चलो आपस में झगड़ते ही करें. अभी सारी दुनिया कम से कम स्टीम लाइंड है. हर कुछ घंटों के बाद भूख लगेगी. कुछ मेहनत करके कमाओ और कमाने पर भी अनाज अपने आप नहीं आता. कैसे आता है, वो सूर्य की रश्मियों से. दैट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेज एनर्जी इन द अर्थ. ये हम वर्णन पढ़ेंगे. देव उग्या, उग्या है, फायर बॉल है. दैट सन इज फायर बॉल एंड दैट इज कॉन्स्टेंटली सप्लाइंग एनर्जी एंड दैट इज वॉट इज प्रोवाइड. नंबर फोर. नंबर फोर के बाद एक क्वांटम जंप है. नंबर फोर तक आप देखेंगे ये पशु पक्षी सब पर लागू होया. उनका भी बॉडी माइंड सोल है, उनका भी प्राण है, उनको भी इस सृष्टि में भोजन आदि मिलता है. अब यहां आ जाएगा सन ओ बंधु जनिता, ये सिक्स्थ पर. यत कामास, हम अपनी कामनाओं से और वी कैन डिमांड मोर, वी कैन अचीव मोर. दे आर हैप्पी विद द सन. सनसेट के बाद अंधेरा हो गया, दे गो टू स्लीप. लेकिन मनुष्य ने कहा नहीं, इन द इमेज ऑफ द सन वी विल इन्वेंट फायर. सूर्य ज्योति फिर अग्नि ज्योति हमने किया. तो मनुष्य हैज लेवल फील्ड टू प्रोसीड फर्दर एंड फर्दर. बट दैट इज बोर इन मटीरियल साइंस टू गेट सेंसुअल प्लेजर्स एंड सम इंटेलेक्चुअल प्लेजर्स. अब इसके बाद देखिए सुपीरियर क्वालिटी ह्यूमन बींग आएगा. अमृत मान शाना स्थिति है, अमृत फिर से आया. थर्ड काइंड ऑफ प्लेजर वे आर बॉडी माइंड के अलावा सीधे डायरेक्ट आत्मा को परमात्मा से मिलता है. द थर्ड प्लेजर एब्सोल्यूट हैप्पीनेस फॉर ओनली नोबल पीपल अमंग अस. फिर जब अब यहां से जाने की भी तैयारी करनी है. अग्नि नए सुपता है, पूरा हमारा मैनिफेस्टो बना के दिया हुआ है. हाउ ए ह्यूमन बींग शुड यूटिलाइज द ह्यूमन लाइफ 1 to 8 16 लाइनों में सब कुछ है. इस ईश्वर उपासना को आप अपने अंदर धारण कीजिए. अब मैं श्री संजय सूद जी को बुला रहा हूं, वो प्रैक्टिस करवाएंगे गायत्री मंत्र के आधार पर हमें ईश्वर उपासना से कैसे लाभ लेना है. 8, 10, 12, 15 मिनट आप लगाइए अपने दैनिक जीवन में.